प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 659.
ॐ नमः सिद्धेभ्य. ॐ नमः सिद्धेभ्य. ॐ नमः सिद्धेभ्य. ॐ शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयरियाणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरसुरनरपतिवन्दने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करोमो धर्मकर्ता एथ श्रीमहावीरने वरिशेषतीर्थङ्करने सिद्धशुद्धास्ति त्वने मुनिगानदृगचारित्रकपवीर्याचरणसंयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वन्दोवणेनो मनुजक्षेत्रे वर्तता अरहन्तने अरहन्तने सौसिद्धने य नमस्करण करियेदिते गणधरणे अध्यापकोने सर्वसाधुसमूहने तसुशुद्धदर्शनज्ञानमुख्यपवित्राश्रमपाणिने प्राप्तिकरो साम्यनि येनापि शिवप्राप्तिवने. आचार्य श्री कुमकुम भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. उसमें से अभी हमारे 8वीं पुस्तक प्रारंभ हो चुकी है और हम आए पेज नंबर पृष्ठ संख्या 30 पर. 30 मिला सबको. देखो ये नया पैराग्राफ तीसरी लाइन से शुरू होता है, वहाँ से पढ़ेंगे. आत्मा तो तुल्य क्षेत्रे वर्ततो हुआ छता पण. तुल्य क्षेत्र नहीं उसे वही क्षेत्र, समान क्षेत्र या तुल्य क्षेत्र कहते हैं उसको. यानी वो एक क्षेत्रावगाही की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्रावगाही संबंध की बात. जिस क्षेत्र में आकाश के प्रदेश में आत्मा के प्रदेश है वहीं पर पुद्गल परमाणु भी वहीं पर है, तो उसको क्या कहेंगे? एक क्षेत्रावगाही संबंध. अकेले कर्म ही ऐसा नहीं, अन्य अनेक अनंत अन्य पुद्गल परमाणु और स्कंद वहाँ पड़े, ये कह रहे हैं यहाँ पर. तो कहते हैं ऐसे होने पर भी परद्रव्य साथे एक क्षेत्रावगाही हुआ छता पण यह आत्मा है वह कर्म का परिणाम और शरीर की अवस्था का परिणाम कहो अवस्था कहो पर्याय कहो एक ही बात है. यानी कर्म हो या शरीर हो उनकी कोई भी अवस्था का ग्रहण त्याग बिना का है. यानी आत्मा उसका ग्रहण और त्याग नहीं कर सकता. ग्रहण यानी उत्पन्न करना और त्याग यानी उसका व्यय करना, ये आत्मा की बात नहीं है. आत्मा है ना, आत्मा वह शरीर कर्म वाणी आदि पर पदार्थ को ग्रहे और छोड़े ऐसा आत्मा में है ही नहीं. हम जिस अर्थ में वो ग्रहण करना और छोड़ना कहते हैं ऐसी बात नहीं है वो. यानी उसको उत्पन्न वो पर्याय उत्पन्न होना और पर्याय नष्ट होना उसको ग्रहण और छोड़ना कहते हैं. आत्मा परद्रव्य की पर्याय को ना उत्पन्न करा सकता है ना उसका व्यय कर सकता है. कहते आत्मा अपने परिणाम को उत्पन्न करे और पूर्व के परिणाम का त्याग करे. परवस्तु का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं. पर वस्तु का कहने से, पर वस्तु का तो है ही नहीं ग्रहण त्याग, उसके पर्याय का भी उत्पन्न करने वाला और व्यय करने वाला आत्मा नहीं है, ऐसा भगवान प्रवचन सार में कहते हैं। आत्मा तुल्य क्षेत्र में वर्तता हुआ भी, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसी क्षेत्र में है, फिर भी उस वहां के पुद्गल परमाणु का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित तो ही है, उसे आत्मा कहते हैं। जो आत्मा कर्म और शरीर के रचकन को ग्रहता नहीं, छोड़ता नहीं, इसलिए वह पुद्गलों को कर्म भाव से परिणमावने वाला नहीं है। यानी वो कारमाण वर्गना को ये पुद्गल को जो कर्म रूप परिणमती है, वो आत्मा का कार्य नहीं है। पुद्गल जड़ जो नया कर्म बनता है, उसे परिणमाने वाला, बदलने वाला आत्मा नहीं है। आत्मा तो अपने परिणाम को करता है, जड़ के परिणाम को आत्मा करता नहीं। अब 186 गाथा, पहले उसका हेडिंग का पढ़ लेते हैं, बाद में हम पुस्तक में से उसकी बात पढ़ेंगे। तब यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता, आत्मा तो विकारी भाव अपने में अपने से करता है और पूर्व की अवस्था का त्याग करता है, कर्म जड़ बनते हैं उसका त्याग ग्रहण आत्मा करता नहीं, कहते हैं आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है? पुद्गल कर्म अंदर आते हैं क्यों, ग्रहण नहीं करता, तो पुद्गल कर्म आत्मा में आती ही क्यों है? आत्मा में आने वाले कर्म रूप से आत्मा के साथ बनना उसका, ऐसा कहते हैं, और छोड़ा जाता है, यानी किस प्रकार ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, और पुद्गल कर्म क्यों छूटते हैं, क्यों चला जाता है, आत्मा में आया और चला गया क्यों, उसका अब इसका अब निरूपण करते हैं। मैं भी हिंदी पुस्तक में से पढ़ूंगी। अथ आत्मना कुतम कुतः तरहिम तरहि पुद्गल कर्म भी उपादानम हानम च इति निरूपयति। उसका अर्थ भी हमने पढ़ा था, फिर पढ़ती हूँ हिंदी में। तब यानी यदि आत्मा पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित नहीं करता, तो फिर आत्मा किस प्रकार पुद्गल कर्मों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है, इसका अब निरूपण करते हैं। अभी हम गाथा पढ़ेंगे। सैदानिं कत्तासं सह परिणामः सदौवजादस्स आदीयदे कदायिन् विमुच्यते कम्मदूलिहिं ते हालद्रव्यजनितनिजपरिणामनो तर्ताभने ग्रहाय अनेकदापि मुकाय छे कर्मोवरे। ये मैंने कम मधुलिहिम चाहिए, ये इसमें मेरे में वो कम वाला म बराबर छपा नहीं है, आप में बराबर होगा।
क्या लिखना है?
यानी मैंने जब पढ़ा ना, तब मेरे में म नहीं दिख रहा था, न दिख रहा था, मैंने कन्म धूल यही में ऐसा वाचा ऐसा पढ़ा, कम्म धूल ही है, यानी कम्म रूपी धूल।
हमारे यहाँ कम्म लिखा है,
बराबर है, मेरे में वो स्पष्ट नहीं था, कम्म धूल ही हिम, हाँ वर्षा वो स्पष्ट था। अभी उसका अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। वह अभी यानी संसार अवस्था में द्रव्य से उत्पन्न होने वाले, द्रव्य जात यानी द्रव्य से उत्पन्न होने वाले के होने वाले, यानी आत्मद्रव्य में उत्पन्न होने वाले स्वक परिणामस्य अशुद्ध स्वपरिणाम का कर्ता सन यानी कर्ता होता हुआ, यानी अभी संसार अवस्था में जो राग मोह द्वेष जो हो रहे हैं वो अशुद्ध परिणाम है, तो उसका कर्ता होता हुआ क्या करते आगे? कर्म रजसे, कर्म धूलि भी है ना, कर्म रजस से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है, यानी कर्म के द्वारा ग्रहण होता है और छोड़ता है, ऐसा वहां आता है। अब हम टीका पढ़ेंगे, यानी वो किसका परिणाम करता है, तो अपने परिणाम का। अपने परिणाम में किसको लिया, मोहराग द्वेष को, विकारी भावों को भी लिया यहाँ पर, परंतु कर्म का कर्ता वो नहीं है। अब इसी की टीका पढ़ते हैं। सो यह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी, क्योंकि पहली गाथा में यह बताया, कौन सी 185 में, कि वो एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी उसका ग्रहण और छोड़ने के त्याग का वो उसके अभाव है उसको, तो कहते ऐसे रहित होता हुआ भी अभी संसार अवस्था में परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, यानी आत्मा स्वयं उसको निमित्त बनाता है, केवल स्व परिणाम मात्र का, उस स्व परिणाम के द्रव्यत्वभूत होने से कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ, द्रव्यत्वभूत यानी वो उसी द्रव्य के अंतर्गत है ना उसका परिणाम, तो कहते अपने परिणाम का करता है, उसके इसी स्व परिणाम को निमित्त मात्र करके, पहले क्या कहा, परद्रव्य परिणाम को आत्मा ने निमित्त बनाया और स्वयं मोहराग द्वेष रूप परिणमित हुआ, अब पुद्गल ने भी क्या किया, वो खुराग द्वेष मोह को निमित्त मात्र बनाया, तो पहले आत्मा ने जिस कर्म के यानी पुद्गल के परिणाम को उसने निमित्त मात्र बनाया था वो कौन सा है, फिर से ये देख सेकंड लाइन फिट पड़ती, पहले से पढ़ते टीका, देखो यह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी, ऐसा होने पर भी क्या हो रहा है, अभी संसार अवस्था में परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, ये कौन सा परिणाम है, परद्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करके पुराने कर्मों का उदय, पुराने कर्मों के उदय को निमित्त मात्र करते हुए क्या कर रहे हैं, केवल स्व परिणाम मात्र का, उस स्व परिणाम के द्रव्यत्वभूत होने से कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ, स्व परिणाम का कर्तृत्व का अनुभव करता हुआ ने अभी राग द्वेष मोह वो करता है, राग द्वेष का अनुभव भी हो रहा है ना उसको, अपनी पर्याय में है उसको अनुभव भी चल रहा है, उसके इसी स्व परिणाम को, अब यहां तक अब आई बात कि आत्मा ने उद्गल के परिणाम को निमित्त बनाया, यानी कौन सा, पुराने कर्मों के उदय को निमित्त बनाया और अपने परिणाम का अनुभव कर रहा है, कर्ता का अनुभव कर रहा है, यानी अपने परिणाम का कर्ता हो रहा है। अब उसके आगे की बात, दूसरा वाक्य क्या है, उसके इसी स्व परिणाम को निमित्त मात्र करके, ये इसी स्व परिणाम यानी कौन सा, मोहराग द्वेष, इसको निमित्त मात्र करके कर्म परिणाम को प्राप्त होती हुई ऐसी पुद्गल रज के द्वारा विशिष्ट अवगाह रूप से ग्रहण किया जाता है और कदाचित छोड़ा जाता है, यानी नए कर्म बनते होते हैं, नए कर्म। देखो पहले क्या बताया, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम को करता है, अभी संसार अवस्था में क्या हो रहा है, पुराने कर्मों के उदय को निमित्त करके जीव अपने परिणाम रूप से परिणमित हो रहा है, कौन सा, मोहराग द्वेष। अब कर्म भी क्या हो रहा है, पुद्गल भी क्या कर रहा है, जीव के उन परिणामों को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, यानी कर्म रूप से परिणमित हो रहा है, तो पर कर्म रूप पर परिणाम होकर वहाँ पुराने कर्मों के साथ वो बन जाता है, दोनों तरफ से नहीं अलग अलग तरफ से हुआ, उसी के साथ नहीं है, आने वाले के साथ उसी को निमित्त नहीं बनाया, तीन जुदी बातें हैं, पुराने कर्मों का उदय उसका निमित्त कहा और मोहराग द्वेष परिणाम जीव ने किया, वो जीव का कार्य, अब वहाँ के जो नए पुद्गल है उसने मोहराग द्वेष को निमित्त बनाया और स्वयं कर्मरूप परिणमित हुए, अकेले इसी के साथ निमित्त उल्टा पुल्टा नहीं है, ये उपादान ये निमित्त उपादान ऐसा नहीं होता, उसको इतरेतर इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं, ऐसा नहीं होता, ख्याल में है ना, यानी ये उसका निमित्त और वो उसका निमित्त, ऐसा नहीं है।
बीच में जीव के मोहराग परिणाम होंगे तो की बात।
हाँ, नहीं नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, नए कर्म के साथ जीव का वो निमित्त और जीव के लिए वो निमित्त, ऐसा नहीं है।
यानी आप बता रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है।
हाँ।
मैं ये कह रहा हूँ कि पुराने कर्मों का उदय वहाँ जीव के मोहराग द्वेष होते हैं।
हाँ।
और जहाँ नए कर्म बनते हैं वहाँ जीव के परिणाम निमित्त रूप से,
निमित्त रूप से।
यानी अगर जीव मोहराग द्वेष नहीं करेगा तो नए बंध नहीं होंगे।
वो कब पॉसिबल है, क्योंकि पर प्रवृत्ति करता है तो मोहराग द्वेष हो गए, तो उसके लिए उपाय क्या है, उसकी स्व प्रवृत्ति हुए, वो कैसे होगी, ये बात आई थी भेद ज्ञान से, उसके लिए वो बात आई थी ना कि उसके लक्षण जुदे, इसके लक्षण जुदे है, नहीं तो जब तक वो भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक परद्रव्य प्रवृत्ति उसकी होती ही रहेगी और मोहराग द्वेष होते रहेंगे। यानी पर को देखते रहे और मोहराग द्वेष न हो, अभी इस रागी मिथ्यात्व अवस्था में ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये बात हो रही है यहाँ पर।
ये तो आप मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं,
मिथ्या दृष्टि की बात हो रही
है। यानी मिथ्या दृष्टि परपक के तरफ ध्यान देता है तो उसको मोहराग द्वेष
हो गई होगी। हाँ, यानी उसके उपाय क्या है, तो स्व का लक्ष्य, पर स्व कौन है मालूम नहीं है ना, स्व का लक्ष्य करके तो ये शरीर में हूँ इसका लक्ष्य कर ही रहा है रात दिन, उसने स्व को निश्चित नहीं किया है, स्व को मानने में गलत है, तो वो सारी उसकी विचारधारा हुई उस स्व के लिए सब कुछ कर रहा है, मैंने मेरे को क्या माना, ये शरीर रूप में हूँ, तो उसके लिए जो कुछ आवश्यक है, जो कुछ उसको अनुकूल लगता है वो करता रहता है, उसको ठाक ठीक रखना है, उसके खिलाना पिलाना है, उसको और क्या क्या कराना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कमाने के पीछे लगा रहता है, पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए पटा रहा। अच्छा देखो, अभी ये भावार्थ पढ़ेंगे, फिर जैसे ना चरी की टीका बाद में पढ़ेंगे भावार्थ। कौन सा ऊपर मुच्यते है हमारे में, एक मिनट, कहाँ कहाँ निमित्त मतलब पुद्गल धूले भी विशिष्ट अवगाह रूपेण उपादीयते कदाचित मुच्यते च, मुच्यते ओरिजिनल में बराबर है, मुच्यते कर लो अभी आपको। हाँ, बराबर है। हाँ, वो तो अभी देखना, कोई बात नहीं। देखो अभी हम भावार्थ पहले पढ़ लेते हैं। अभी संसार अवस्था में जीव पौद्गलिक कर्म परिणाम को निमित्त मात्र करके अपने अशुद्ध परिणाम का ही करता होता है, क्योंकि उसने निमित्त उसको बना के स्वयं मोहराग द्वेष रूप परिणमित हुआ है, वो स्वयं वो उसका करता है, कर्म ने उसको नहीं कराया है। लोग ऐसा ही मानते हैं ना, क्या करें, कर्म का उदय आया इसलिए हमको करना पड़ा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह अशुद्ध परिणाम स्वद्रव्य से उत्पन्न होता है, तो कहते परद्रव्य का कर्ता नहीं होता, अपने परिणाम का कर्ता होता है, परद्रव्य का कर्ता नहीं होता। यानी वो मोहराग द्वेष करता है परंतु कर्म का बंध वो नहीं करता है। इसी प्रकार जीव अपने अशुद्ध परिणाम का कर्ता होने पर जीव के उसी अशुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके कर्मरूप परिणमित होती हुई पुद्गल रज विशेष अवगाह रूप से जीव को ग्रहण करती है। जीव को ग्रहण करती है, नहीं वो तो जीव के साथ रहती है। हम अपनी ओर से कहेंगे तो हमने कर्म को ग्रहण किया, अब कर्म की ओर से कहेंगे तो कर्म ने जीव को ग्रहण किया। नीचे फुटनोट लिखी यहाँ पर, कर्म परिणत पुद्गलों का जीव के साथ विशेष अवगाह रूप से रहने को, विशेष अवगाह नहीं वो उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है ही है, परंतु जहाँ वो जाता है वो तो उसके साथ बना रहता है, जब तक उसकी स्थिति नहीं पूरी होती है और वो कर्म से अकर्म नहीं होता है तो वो जीव का कर्म कहलाएगा। तो जीव के प्रदेशों के साथ वो भी वहाँ एक क्षेत्रावगाह्य ना रहेगा परभव में जाते समय भी, क्योंकि अन्य पुद्गलों के साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है। हम यहाँ से मंदिर गए तो यहाँ के पुद्गल यही रहेंगे, जरूरी नहीं कि वो अपने साथ आ जाएंगे, ख्याल में आए ना। तो ये कर्म और जो विसरसोपच उसके साथ बंधे हुए जो है वो चले जाएंगे, अन्यथा अन्य पुद्गल तो हर समय उसके साथ नहीं जाएंगे। यहाँ क्या कहते हैं,
अभी हमारे पास जो एक क्षेत्रावगाही जो कर्म के परमाणु है
कर्म रूप हुए है,
हाँ, हिंदुस्तान हाँ। में हम अमेरिका गए तो वो अपने साथ आएंगे कि उधर के नहीं आएंगे?
ये हमारे जो कर्म बंधे हुए जो कर्म कहते
हैं उसके साथ में जो दूसरे
एक क्षेत्र उसको कर्म कह रहे हैं आप, कर्मानु वर्गना नहीं ना,
कर्मानु वर्गना
हाँ हाँ कर्मानु वर्गना कह रहे हाँ, वो भी आ सकती है, वो आ सकती है विश्वसोच रूप हो तो आ सकती है, या अन्य भी नए वहाँ पर भी आ जाएगी,
दोनों पॉसिबल
हाँ। यानी ये जरूरी नहीं है कि हमने ग्रहण करके छोड़ी हुई पड़ी है और वो इसको ग्रहण कर, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
लेकिन अवधारिक शरीर वाले परमाणु वो आएंगे साथ में क्या? नहीं,
यानी आहार वर्गण आपको कहना है, आहार वर्गना भी नहीं नहीं ले लेगा, जहाँ कहीं जाएगा वहां से। वैसे कर्मण वर्गना सर्व जगह पड़ी है ना, कर्मण वर्गना तो जीव के साथ बंधी हुई नहीं है, तो अभी यहाँ है तो यहाँ के नहीं इस प्रदेशों में से ली, अब वो यहाँ से चला गया अमेरिका तो वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ आत्मा है उस क्षेत्र में जो कर्मण वर्गना होगी वो उस रूप परिणमित होगी, यहाँ से साथ में तो नहीं ले जा सकता है। कर्म जाएगी साथ में, वहाँ जो पड़ी है सर्वत्र पूरे लोक में पड़ी है कर्मण वर्गना, तो जाते समय यहाँ की कर्मण वर्गना ले जाएगी कहाँ से बात आई, वो नहीं हो सकती बात। वो तो उसके साथ कोई बंधी हुई नहीं है, वो उसके साथ आएगी भी नहीं। जीव के साथ कौन बंधा है? कर्म, हाँ वो कर्म पर यानी कर्म रूप हो गए अभी हाँ। जो लूज कर्मण वर्गना है वो तो उसके साथ बंधी हुई नहीं है, एक क्षेत्रावगाह पड़ी है। अब जीव जहाँ जाएगा वहाँ की जो एक क्षेत्रावगाह रूप से होगी वो कर्म रूप हो जाएगी, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि इन पुद्गलों की अनंतता का ही अपने को पता नहीं कितना कितना अनंत है, और उसमें भी वो सादि द्रव्य अनादि द्रव्य की बात सुनोगे आप तो और चौक जाओगे। याद है कि भूल गए सादि द्रव्य किसको कहते हैं, अनादि द्रव्य किसको हाँ, किसने? इस जीव ने नहीं, सभी अनंत जीवों ने, जो जो सिद्ध हो चुके उसको भी लेना साथ में हाँ। अकेले कर्म रूप नहीं, किसी रूप से जीव ने नहीं ग्रहण किया, न कर्म रूप से, न शरीर रूप से, न भाषा रूप से, न तेजस रूप से, यानी उस जीव के साथ कोई संबंध नहीं आया है, ऐसा इसको कहेंगे अनादि द्रव्य, और वो सादि द्रव्य से अनंत गुना है। खाली टच किया करने से नहीं, उसने ग्रहण नहीं किया है, किसी भी जीव ने ग्रहण नहीं किया है, यानी ग्रहण करके बिल्कुल उसी को अनादि द्रव्य कहा है। जब हम पुद्गल परावर्तन देखते हैं तो उसमें तो ऐसा आता है कि ऐसा है ही नहीं कि जो जीव ने अनेक बार ग्रहण करके छोड़ा नहीं, ऐसा आता है, वो तो सामान्य कथन है। धवला में ऐसा स्वयं प्रश्न पूछा, ऐसा तो लिखते हैं और आप कहते हैं ऐसा अनादि द्रव्य इतना पड़ा है, सादि द्रव्य से अनंत गुना पड़ा है, यानी वहाँ तो ऐसे हिसाब किया कि मान लेते कि उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध हर समय ग्रहण किया, कब से? अनादि से। कितने जीवों ने? अनंत, सिद्धों सहित सब, क्योंकि सिद्ध भी पहले ग्रहण करते थे, उन्होंने भी ग्रहण करके छोड़े हैं, जो अभी यहाँ पड़े हैं सर्वत्र उसको भी कंसिडर करो। तो ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु है जो किसी भी जीव ने ग्रहण करके छोड़े नहीं है, उसको कहेंगे अनादि द्रव्य, और सादि द्रव्य किसी न किसी जीव ने कभी न कभी उसको ग्रहण करके छोड़ा है।
ये जब तेवीस मार्गना बताएंगे, तेवीस मार्गन नहीं,
तेईस वर्गना, वर्गना
तो ये बात ख्याल में आती है, क्योंकि हमें तो सिर्फ पांच मालूम है, हर वर्गना भाषा वर्गना,
वो तो जीव ग्रहण करता है उसको ये पांच बताइए।
हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। जो अन्य वर्गना 18 वर्गनाएं है। हाँ। उसका थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आप जो कह रहे वो कन्विंसिंग लगता है,
बरोबर है।
अदरवाइज आप बोलते हो हमने प्रमाण वचन गुरु,
और ऐसे लूज परमाणु है कितने, सिंगल परमाणु अनंत अनंत पड़े हैं, जो कोई स्कंद रूप नहीं हुए हैं उसका भी अनुवर्गना का है ना, उसका भी वर्गना में नाम लिया है, उसका भी अनु एक, एक सिंगल, एक सिंगल वाले है, दो द्विनुक है, त्रिअणुक है, असंख्यात अनुक है, असंख्यात अनुक है, अनंत अनुक वगैरह वगैरह, यानी ये पुद्गल की अनंतता का इतना लंबा चौड़ा वर्णन आता है शास्त्र में। हाँ देखो आगे पढ़ते हैं, भावार्थ हम पढ़ रहे थे, नीचे फुटनोट हमने पढ़ी, फिर से पढ़ते देखो, कर्म परिणत पुद्गलों का, मैं ओरिजिनल पुस्तक में से फुटनोट पढ़ रही हूँ, जीव के साथ विशेष अवगाह रूप से रहने को ही यहाँ कर्म पुद्गलों के द्वारा जीव का ग्रहण होना कहा है। हम तो जीव के द्वारा कर्म को ग्रहण सुनते आले, पर ये कर्म के द्वारा जीव का ग्रहण ही नहीं, कर्म भी उस जीव के साथ रहेगा, तो उसने जीव को पकड़ा भी। ऊपर हम पढ़ रहे थे जहाँ से फुटनोट के लिए नीचे आए, तो पुद्गल रज विशेष अवगाह रूप से जीव को ग्रहण करती है और कभी इन्हें स्थिति के अनुसार रहकर अथवा जीव के शुद्ध परिणाम को निमित्त मात्र करके छोड़ती है, जीव को ग्रहण करती है नहीं, जीव के साथ बनती है। तो कर्म कहेगा जीव हमारे साथ बंधा, तो कर्म ने जीव को ग्रहण किया कहा, और कर्म जीव को कभी छोड़ेगा, या स्थिति पूरी होने पर या शुद्ध परिणाम के कारण वो निर्जरा होती है तो कर्म उसको छोड़ के चले जाए, तो वहां कहते जीव को छोड़ दिया उसने, जीव को ग्रहण किया और जीव को छोड़ दिया। अब हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे, 361 से शुरू होता है मेरे में, आप देखना मैं पढ़ती हूँ वहां पर।
गुजराती में 31 पेज पर है।
हाँ 31 पेज है। अथ यदि अयम आत्मा पुद्गल कर्मम न करोति न च मुंचति, पुद्गल कर्म है, हाँ, पुद्गल कर्म न करोति न च मुंचति, तर्हि बंधः कथम, यानी यदि यह आत्मा पुद्गल कर्म को नहीं करता है और नहीं छोड़ता है, पुद्गल कर्म को नहीं छोड़ता है, करता नहीं कर, छोड़ता नहीं, नहीं उसके पर्याय को नहीं करता, तो बंध कैसे हो सकता है, बंध कैसे होता है, तरही मोक्षोपि कथम, और मोक्ष भी कैसे होता है, क्योंकि करता भी नहीं है छोड़ता भी नहीं है, तो मोक्ष भी कैसे होगा और बंध भी कैसे होगा, इति प्रश्ने, ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तरम ददाति, उसके लिए उत्तर देता है, स इदानीम कत्ता सम, स इदानीम कत्ता सम, इन्हें स इन्हें वह पूर्वोक्त, वह इन्हें कौन, पूर्वोक्त लक्षण आत्मा, इदानीम को अर्थ इन्हें वो स इदानीम कर्ता सन, उसका अर्थ क्या हुआ, वह इसका अब कर्ता होते हुए, स इन्हें कौन, पूर्वोक्त लक्षण आत्मा, पहले जो बताया वो आत्मा, इदानीम को अर्थ एवं पूर्वोक्त नए विभागे न, यानी जो ऊपर बताया उस नए नए से, उस नए से कर्ता होता हुआ, कस्य सग परिणामस्य, ये नए विभाग क्यों डाला, क्योंकि यहाँ राग का कर्ता बता रहे हैं ना, अशुद्ध नए से, अशुद्ध निश्चय नए से राग का कर्ता है आत्मा, निश्चय क्यों, क्यों आत्मा की पर्याय है, और अशुद्ध क्यों, क्यों विकार है, तो उस नए से उसका कर्ता होता हुआ, किसका कर्ता, कस्य ने किसका, सग परिणामस्य यानी अपने परिणाम का, अब उसके लिए बता रहे हैं जैसे ना चर के हमेशा की स्टाइल, निर्विकार नित्य आनंद एक लक्षण परम सुखामृत व्यक्ति रूप कार्य समयसार साधक निश्चय रत्न त्रयात्मक कारण समयसार विलक्षणस्य। उनको तो मिथ्यात्व रागादि को समझाना है, तो वो कैसे है, तो शुद्ध भाव से विपरीत लक्षण वाले विलक्षण है। तो ये शुद्ध भाव को समझाने के लिए क्या क्या बता रहे, देखो यानी निश्चय उल्टा पढ़ेंगे, विलक्षण से बताए ना किससे विलक्षण है, तो निश्चय रत्न त्रयात्मक कारण समय सार। ये कारण समय सार और कार्य समय सार, कार्य समय सार यानी शुद्ध परिणति, और उसका कारण क्या है, निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय यानी कौन, समय दर्शन ज्ञान चारित्र। उससे उल्टा क्या है, मिथ्यात्व यानी मोहराग देश। वो क्या है, तो कार्य समय सार साधक, कार्य समय सार का साधक ऐसा जो निश्चय रत्नत्रय है उससे विपरीत। अब वो कार्य समय सार कैसे समझा है उन्होंने, व्यक्ति रूप कार्य समय सार, व्यक्त हुआ यानी पर्याय में प्रकट हुआ, वो कार्य बताएंगे। और वो क्या प्रकट हुआ, निर्विकार नित्य आनंद एक लक्षण परम सुखामृत व्यक्ति रूप, ऐसा जो कार्य समय सार है उसका साधक है वो निश्चय रत्नत्रय है, और वो निश्चय रत्नत्रय से विपरीत लक्षण वाला ऐसा मिथ्यात्व राग द्वेष है। तो कहते हुए मिथ्यात्व रागादि विभाव रूपस्य स्वकीय परिणामस्य, यानी ये मोह राग द्वेष रूप विकारी पर्याय है, वो अपने परिणाम है, उसका वो कर्ता होता है। पुनरपि किम विशिष्टस्य, और क्या विशेषता है उनकी, तो कहते हैं यानी अपने परिणाम का, ये अपने परिणाम उनकी क्या विशेषता है, दौव जातस्य स्वकीय आत्मद्रव्य उपादान कारण जातस्य, यानी अपने आत्मद्रव्य रूप उपादान कारण से वो उत्पन्न हुए, जात यानी उससे उत्पन्न हुए। ते आदि यदे कदाई कम धूलिहिम, आदि यते यानी बध्यते, यानी वो क्या होते हैं, बनते हैं, का भी किनके द्वारा बनते हैं, तो कर्म धूलि भी। ये परिणाम कैसे है, जीव के अपने हैं, जीव से उत्पन्न हुए। तो कहते हैं वो तो किससे बनते हैं, कर्म के धूल के द्वारा। कर्तृभूता भी कदाचित पूर्वोक्त विभाव परिणाम काले, यानी कर्म के धूलि के द्वारा वो बनते हैं, कब, ये जो पूर्वोक्त ऊपर बताया है उस विभाव परिणाम के काल में कर्म के द्वारा बनते हैं। न केवलम आदियते, केवल बनते ऐसा ही नहीं है, विमुच्छते विशेषेण मुच्छते त्यज्यते ताभी कर्मधूलि भी, यानी उन कर्मधूलि से वो छूटते भी हैं, छोड़े भी जाते हैं। कदाचित पूर्वोक्त कारण समयसार परिणति काले, यानी शुद्ध परिणति के काल में। कारण समयसार किसको कहा था, निश्चय रत्नत्रय, तो निश्चय रत्नत्रय के कारण कदाचित छूटते भी हैं। एतावता किमुक्तम भवति, ऐसा होने पर क्या होता है, अशुद्ध परिणामेन बध्यते शुद्ध परिणामेन मुच्यते इति, यानी अशुद्ध परिणाम के द्वारा बनते हैं और शुद्ध परिणाम से छूटते हैं। मुच्यत लिखा है उसमें, क्या लिखा है, मुच्यत मुच्यते होना चाहिए, क्योंकि अमृतचंद्राचार्य के उसमें भी मुच्यते ही लिखा है ना, मुच्यते इति, क्योंकि बध्यते लिखा है ना तो मुच्यते। वो अमृतचंद्राचार्य में तो मुच्यते ही लिखा है, हाँ विशेषण मुच्यते तज्यते ताभी विमुच्यते। चलो अभी आगे यहाँ पढ़ेंगे हम गुरुदेव का प्रवचन, पेज नंबर 30 पर नीचे का पैराग्राफ वहाँ से पढ़ेंगे। यह आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, शरीर वाणी कर्म आदि परद्रव्य से आत्मा भिन्न है, यह शरीर मिट्टी है, मिट्टी का अर्थ क्या है, पुद्गल से बनी है ना, वाणी भी मिट्टी पुद्गल है और अंदर आठ कर्म धूली है, वह भी धूली है, रचकण से बने उस सबको मिट्टी कहा गया। उससे आत्मा तो भिन्न है, अपना आत्म शुद्ध स्वरूप चिदानंद है, आत्मा चाहिए ना, आत्मा हुआ आत्मा, शुद्ध स्वरूप चिदानंद है, अखंड आनंद स्वरूप और शुद्ध है। उसे भूलकर, यानी उसका कभी लक्ष्य ही नहीं किया, ऐसा नहीं कि पहले हुआ था फिर बाद में भूला, ऐसा नहीं है, उसका अनुभव कभी नहीं किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, उसका कभी पहचान नहीं उसको, तो उसे भूलकर पुण्य और करना और हुआ है, पुण्य और पाप, दया दान काम क्रोध विकल्प विकार रूप परिणमे, विकार रूप हो और पहले का विकार छोड़ दे, यानी नया विकार करता है और पूर्व का व्यय होता है। मैंने कल बताया ना, क्रोध करेगा और लोभ छूट गया उसका, क्योंकि ये जो क्रोध मान माया लोभ अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटते रहते हैं, उसका उदय भी पलटता है, नहीं जीव स्वयं उस रूप परिणमिन हो रहा है, कभी क्रोध रूप, कभी माया रूप, कभी मान रूप, कभी लोभ रूप, ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में नियम से पलटते। तो कहते पूर्व पर्याय को छोड़ा और नया पर्याय को ग्रहण किया उसने, परंतु उस कारण से नए पुद्गल बनते हैं, उन्हें आत्मा परिणमा दे कर्म बांधे ऐसा होता नहीं, इतना स्पष्ट लिखा है और मूल गाथा में लिखा है। सो यह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण त्याग से रहित होता हुआ भी, पहले रहित है ये तो पहले गाथा में, पहले 81-85 में सिद्ध कर दिया उन्होंने, अब यहाँ ऐसा होता हुआ भी की बात है। पहली पंक्ति है, प्रत्येक आत्मा देह में विराजमान है वह अरूपी है, उसमें रूप रस गंध नहीं है, और हम उसको रूप रस गंध के द्वारा पहचानने की कोशिश करते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रियों के द्वारा तो रूप रस गंध वर्ण यानी यही सब दिखेगा ना, इंद्रियों के द्वारा तो क्या देख जानने में आएगा, पुद्गल, क्योंकि पुद्गल के जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो इंद्रियों के द्वारा हम उसको जानते हैं, जानने वाला आत्मा है, परंतु रूप रस गंध वर्ण वाला आत्मा नहीं है, तो उसको जानना है, किसको, जानने वाले को जानना है, तो कैसे जानेंगे, तो उसके पास लक्षण क्या है, प्रकट लक्षण, ज्ञान उसका प्रकट लक्षण है, तो जानने वाला जो है, जो ज्ञान रूप परिणत हो रहा है वही तो आत्मा है, और हम आत्मा किसको मानते हैं, ये काला गोरा जो कुछ है उसको है। क्या कहते, विकार रूप हो, पहले का विकार चढ़ते, उस कारण से नए पुद्गल बनते, उन्हें आत्मा परिणाम आ दे कर्म बांधे ऐसा होता नहीं, बराबर है, देखो नहीं हम नीचे पढ़ रहे थे, उसमें रूप रस गंध नहीं, ये पढ़ रहा था मैं नीचे से चौथी लाइन, तो रूप रस गंध वाला शरीर और आठ कर्म जो धूल है, उस परमाणु को आत्मा ग्रहे और छोड़े, वह उसके स्वरूप में है नहीं, ऐसा होने पर भी ऐसा कहना है, कहना है कि कहता है क्या है, यानी ऐसे लोग कह रहे हैं, आत्मा परवस्तु का त्याग ग्रहण बिना का होने पर भी अभी संसार अवस्था में, इस संसार यानी विकारी दशा में परिभ्रमण करता है, उस दशा में परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, अभी परद्रव्य परिणाम किसको लिया, देखो पूर्व के कर्म का उदय आया वह निमित्त मात्र हुआ, तो हम क्या कहने, आत्मा ने उसको निमित्त बना के स्वयं उस रूप परिणमित हो गया, कर्म ने उसको परिणमित नहीं कराया है, परद्रव्य पर देखो दोनों ही एक समय में है, पहले कर्म का उदय आया और फिर जीव ने ऐसा परिणाम किया, ऐसे दोनों एक साथ एक समय में बातें होती है, जीव जीव में अपने से परिणमता है, कर्म अपने से परिणमता है, परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए, पुराना कर्म है वह तो निमित्त मात्र है, कर्म आत्मा को विकार कराते नहीं, कितना भी स्पष्ट और लिखना है, वैसे ही कर्म आत्मा का विकार छुड़ाते नहीं, पूर्व का पुद्गल कर्म पड़ा है वह तो निमित्त मात्र है। परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र करते हुए केवल स्व परिणाम मात्र का आत्मा तो केवल अपना राग द्वेष पुण्य पाप दया दान काम क्रोध परिणाम को करता है। समझ में आया? आत्मा अरूपी है, शुद्ध चिदानंद आत्मा है। सिद्ध समान सदापद मेरु ऐसा शुद्ध चैतन्य अपने को भूलकर अपने शुद्ध स्वभाव का शरण लिए बिना श्रद्धा ज्ञान और शुद्धता का उपयोग अपने स्वरूप का आश्रय किए बिना आत्मा जो विकार करता है यानी वो अपना लक्ष्य नहीं कर रहा है, जो शुद्ध स्वभाव है तो उसका लक्ष्य नहीं कर रहा है, उसको नहीं जान रहा है तो क्या कर रहा है? विकार करता है। मिथ्या श्रद्धा राग द्वेष पुण्य पाप दयादान व्रत आदि शुभाशुभ विकार करता है और उसमें पूर्व कर्म निमित्त मात्र है। पूर्व के कर्म को निमित्त मात्र करते हुए आत्मा अपने विकारी परिणाम का कर्ता होता है। विकारी परिणाम का परिणमन अपने से होता है, वह कर्म से होता नहीं। लोगों के यही भूल है, अभी इतना कर्म है मुझको कर्म को काटना है, उसकी निर्जरा करना है। अरे तुझे परद्रव्य में तेरा कुछ कार्य नहीं कर सकता तू, ये पहले में पहले नक्की होना है। हम राग द्वेष करते तो कर्म स्वयं बनते, और हम अपने आत्मा का आश्रय करेंगे तो स्वयं स्वयं में वे छूट जाएंगे, नए बंधेंगे नहीं और पुराने अधिक मात्रा में छूट कर निकल जाएंगे। ये सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ऐसा है। पर हमने मान क्या रखा है? नहीं, हमको कर्मों को कैसे भी करके उसको उसकी निर्जरा करना है। हाँ। देखो केवल स्व परिणाम मात्र का, देखो कितनी स्वतंत्रता बताई, और ये स्वतंत्रता का स्वीकार अपने बुद्धि के द्वारा होना चाहिए। लोगों को लगता है अब क्या करें, फिर क्या करें, नहीं क्या करना चाहता है? पाप छोड़कर कुछ पुण्य करना चाहता है और उसी से धर्म होगा, मोक्ष मिलेगा, ये मान्यता बनी है। मोक्ष चाहता है, अंदर से चाह है, क्योंकि दुखी है तो सुखीपना की चाह होगी, परंतु मालूम नहीं उपाय क्या करना है। तो क्या दिखता है? अरे कुछ त्याग करो तो मुझे पहले जल्दी मोक्ष हो जाएगा, जल्दी हो गई ना, क्योंकि अभी तो पता चला, जब उसको लगता है कि नहीं नहीं अभी यही करने लायक है तो उसको ऐसा लगता है मैं क्या करूँ और कैसे जल्दी से जल्दी हासिल करूँ, तो क्या पहले में पहले ये इसका त्याग करूँ उसका त्याग करूँ चालू हो जाती है बात। तो मूल जो बात है, पहले में पहले अपने आत्मा का अनुभव करना है, वो बात छूट जाती है। क्योंकि है ना परद्रव्य का, यानी अभी किसी को ऐसे शुभ भाव आ रहे कि त्याग करो, किसी को खोटे परिणाम आए कि अभी भोग लो, अभी मनुष्य भोग इतना दुर्लभ है ना, तो फिर मिलेगा नहीं तो अभी भोग लो। किसने देखा है? उसको तो ऐसा लगता है, आप कहते हैं इसलिए हा? हम लोग ऐसे पूछते भी है, सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है, आप कहते हैं, आप कहते हैं ऐसा। अरे मान लेते हमारी आयु इतनी है 80-100 साल की और आप कहते हैं उसको ऐसे दुर्लभ है तो इसको भोग कर तो छोड़े उल्टा दिमाग ऐसा ही है और जिसको पता चला नहीं नहीं अभी मोक्ष प्राप्त करना है, इसी भाव में कुछ ना कुछ करना है तो चलो पहले में मुनि दीक्षा ले लूँ, ऐसा लगता है। परंतु उस राग जो हो रहा है, कौन सा दीक्षा लेने का भाव है, उस भाव से मैं जुदा हूँ, इसका कुछ उसका एहसास नहीं, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ। या शुद्धन ऐसे जीव उसका करता है, परंतु पुराने कर्मों का वैसा उदय को निमित्त बना के वो स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है। अब यहाँ तक तो ये तो जीव का अपना परिणाम है, यहाँ स्वीकार करना है, फिर आगे कैसे भेद ज्ञान करना उसकी बात तो आगे आएगी। देखो पेज नंबर 33 पर है। देखो केवल स्व परिणाम मात्र का, केवल यानी ओनली ऐसे लिया, आत्मा अपने शुद्ध उपयोग को भूलकर, वह तो शुद्ध चिदानंद आत्मा है, उसके उपयोग का व्यापार तो अंदर में शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध है तो उसका उपयोग भी पर्याय में भी शुद्ध होना चाहिए था, परंतु उसे भूलकर अनादि संसार दशा में केवल स्व परिणाम करता हुआ, ये कौन से मोह राग द्वेष वाले, विकारी की बात चल रही। केवल क्यों कहा? क्योंकि कर्म का परिणाम जो नया बनता है उसे भी करता है और अपना परिणाम भी करता है, ऐसा नहीं। पूर्व के कर्म को निमित्त मात्र करके परिणमता है। कौन किस रूप से? विकार रूप से। परद्रव्य यानी पूर्व कर्म, उसकी पर्याय अर्थात उदय आया वह कर्म, उसे निमित्त मात्र करते हुए, निमित्त मात्र करते हुए ने निमित्त बनाया, अपने में विकारी परिणाम किया तो पूर्व के कर्म को निमित्त बनाया अथवा निमित्त हुआ। विकारी परिणाम उसने स्वयं किया है और वहाँ पूर्व कर्म का उदय वहाँ हाजिर है, उसको निमित्त कहेंगे। समझ में आया? एक रचकण को भी आत्मा हेर फेर कर सके ऐसी आत्मा में ताकत नहीं। आत्मा अपने विकार परिणाम को करे और विकार को छोड़े, ये उसका कार्य हो सकता है, परंतु परद्रव्य कर्म को ग्रहे ऐसा है नहीं। आत्मसिद्धि में आता है ना, जीव वीर्य निस्फुरणा ग्रहण करे जड़ धूप। जीव वीर्य निस्फुरणा 82। जीव वीर्य निस्फुरणा करे जड़ धूप, ग्रहण करे कहाँ, वह तो निमित्त से कथन है। परमाणु रचकन धूली है, उसे आत्मा ग्रहता नहीं। अज्ञानी ऐसा कहते कि यहाँ ऐसा लिखा है, देखो ग्रहण करे जड़ धूप। पेज नंबर 34 पर मैं पढ़ रही हूँ, जड़ के परमाणु को आत्मा क्या ग्रहे? आत्मा तो अपने अरूपी स्वभाव में परिणमन करे, राग द्वेष करे, पुण्य पाप हो, परंतु पर का ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं। शास्त्र में जो ऐसा आता है, अभी सब कर्णानियों का कोई भी ग्रंथ निकालो कर्मकांड का, तो वहाँ क्या बातें आएगी कि इतने इतने अनंत परमाणु जीव ने ग्रहण किए, वो कर्म रूप हो गए, उसकी निषेक रचना हुई, तो जीव ने उपशमाया, जीव ने ग्रहण किया, जीव ने क्षय किया, इसी बातें वहाँ आएगी। ये निमित्त का कथन ऐसा ही होता है, कथन पद्धति हरेक अनियोग की अलग अलग है, परंतु हमें तो वस्तु स्थिति क्या है उसको पहले समझना है। यानी तो उपचार से कथन आता है, निमित्त को बताना है तो ऐसा आता है कथन वहाँ पर। तो कहते प्रकार ग्रहण त्याग आत्मा में है ही नहीं। पांचवी लाइन, तो मकान बना सकते हैं कि नहीं? अपने आप ही बनता है। अभी जयपुर में 1,00,000 रुपए का मकान बनाया है, यहाँ 50,000 का बनाया, लो बनाया कि नहीं? यहाँ भगवान ना कहते हैं, परद्रव्य की पर्याय का आत्मा ग्रहण त्याग बिना का है तो परद्रव्य को परिणमाने वाला है नहीं। परवस्तु की अवस्था का परिणमाने वाला, बदलाने वाला, कराने वाला, करने वाला है नहीं। निमित्त मात्र होने से क्या उसका परिणमाने वाला करता हो गया? ऐसा कहते हैं, वह भला बुरा भाव को करता है परंतु परद्रव्य का करता तो है नहीं। को समझ में आया? और निमित्त बनाकर स्वयं परिणम रहा, केवल स्वपरिणाम मात्र, केवल और स्वपरिणाम मात्र ऐसा कहकर इतना वजन दिया है। समझ में आया? और पहले में ऐसा कहा, परद्रव्य परिणाम को निमित्त मात्र, बस पूर्व कर्म का उदय आया वह तो निमित्त मात्र है, वह आत्मा को विकार कराते हैं ऐसा नहीं। और आत्मा केवल स्वपरिणाम मात्र का अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर, मैं चिदानंद ज्ञाता दृष्टा हूँ उसे भूलकर, वह शुभ और अशुभ भले बुरे भाव को करता है। अगर अपना लक्ष्य करे तो ये परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे। तरीका यही है। आप कहेंगे पहले कर्मों को रुका दो क्योंकि उसका निमित्त है, तो यहाँ जीव के भाव हो रहे, निमित्त कब कहेंगे, जीव भाव कर रहा है तो वही तो निमित्त कह रहे हैं ना उसको, ऐसा नहीं कि उसका उदय हो रहा है, जीव अपना लक्ष्य नहीं कर रहा है, पर का ही लक्ष्य कर रहा है और उसको वो क्रोधमान माया लोग मोह राग द्वेष न हो ऐसा नहीं बन सकता। उदय क्या सूचित करता है, निमित्त क्या किसको कहेंगे, कार्य हुआ तो निमित्त कहेंगे, तो कर्म के उदय को निमित्त तो कह रहे हैं, कर्म का उदय हो और जीव का उसको राग द्वेष नहीं करे ऐसा कब कहेंगे। हाँ तो वो अपना लक्ष्य करके अपने में बसे तो पर का लक्ष्य छोड़ देगा तो कैसे उस जाति के अनंतानुबंधी वाले नहीं उत्पन्न होगी, या मिथ्या तो नहीं होगा। बाकी भी अभी चौथे वाला है तो तीन कषाय चौकड़ी है उसके बाकी, पर मार्ग तो यही है। क्या कहते हैं पर, हाँ लास्ट पैराग्राफ 34 पेज,
यहाँ जो आखिर की लाइन है अभी, हाँ? जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे थे,
हाँ?
उसमें नीचे से तीसरी लाइन में लिखा केवल स्व परिणाम मात्र का,
हाँ?
यानी अपने शुद्ध स्वभाव को भूल कर, ये मूल बात है,
भूल कर, हाँ?
मैं चिदानंद ज्ञाता दृष्टा उसे भूल कर वह शुभ और अशुभ भले बुरे भाव को करता है।
बराबर।
आजकल जो बातें चल रही है कि हम यानी कुछ मुनि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने सुना कि हम तो ये संसारी मतलब संसार में रहने वाले जो जीव है वो पाप वो करते हैं और हम पुण्य करते हैं, यानी पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा, ये मान्यता उनकी चालू है, दोनों ही बंध का कारण, ये भूल जाते हैं,
यानी उससे एकत्व बुद्धि हो जाती उस राग के साथ। पाप करो ऐसा नहीं कह रहे, परंतु जो पाप छोड़कर अभी पुण्य कर रहे हैं और उसमें इतना एकत्व है उस राग भाव के साथ, उससे जो भिन्नता जाननी है, उससे जो भेद ज्ञान करना है। देखो शरीर से भेद ज्ञान तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, अन्यमति भी जानते, अरे अभी तो बोल रहा था चला गया, जीव चला गया कहेंगे, इसका प्राण उड़ गया कहेंगे, यानी वो जीव जुदा था वो निकल गए, इतना तो सब समझते हैं, पर ये राग से जो भेद ज्ञान है वो मूल बात है और वो जल्दी नहीं छूटती। स्पेशली जो पाप कर रहे हैं उसको समझता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, पर ये तो पुण्य कर रहा है ना, तो उसमें अभिमान हो जाता है उसको।
नहीं, अभिमान हो जाना अलग है, अभिमान हो जाना अलग है, लेकिन अभी हमने कल परसों जो सुना कि तुम लोग पाप कर रहे हो हम पुण्य कर रहे
हैं,
यानी
तो
पुण्य में इतनी एकत्व बुद्धि हो गई कि पुण्य करना अच्छा यही बात सिखा रहे, यानी आश्रव तत्व बंध तत्व संबंधी भूल हो रही है,
और जीव को और आश्रव को एकमेक कर दिया ना उसने, करने जैसा माना, सात तत्व में श्रद्धा में भूल है उसकी, ये श्रद्धा में कैसा लेना था, श्रद्धा की बात है, छूटेगा तभी छूटेगा, अरे अभी छठे सातवें वाले को भी नहीं छूट रहा है तो आप कहाँ से छोड़ोगे उसको, तो कहते कि वो छोड़ने लायक है, छूटकर अपने में लीन होने लायक है, ये पहले नक्की करना है, पाप पुण्य अपने आप छूटेगा यथा समय पर, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य करना पड़ेगा। पर ये तो राग के साथ एकत्व लेके बैठा है, उसके साथ वेद ज्ञान की बात ही नहीं सोचता है, तो मार्ग क्या माना उसने, ये राग कौन सा पुण्य वाला राग करते करते मोक्ष हो जाएगा।
यानी गुरुदेव ने कितने पहले समझाया,
कितना
राग करता करता वितरकता न था है।
बराबर।
और ये भी बताया कि कस्तूरी नो ओढ़कर ना होए,
लसन खाता
यानी ये बोलने
वाले इतना मंदिर का अटैचमेंट मत
रखो। देखो अटैचमेंट मत रखो के बदले उस अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट मत रखो, मैं कहूँ कि राग के साथ राग मत करो, एकत्व मत करो, राग तो हर एक को अलग अलग आएगा, किसी को कैसा आएगा किसी को कैसा आएगा, आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसकी बात नहीं करनी है, जो कोई राग जिसको हो रहा है उससे भेद ज्ञान करने की मुख्य बात है, क्योंकि उठने वाले राग आपको जैसा राग उठेगा मेरे अलग टाइप का उठेगा, हरे को ऐसा नहीं किया है ये छोड़ो और ये करो ऐसी बात नहीं होती उसमें, वो आपके कहने से नहीं होती, वो सहज हो रहे हैं उसके वैसे परिणाम हो रहे हैं, अभी उसमें से रास्ता क्या है, वो तो परिणाम में कुछ हेरा फेरी करना चाहता है, ये अटैचमेंट रखने को, ये वो आपको पूछ के कहाँ आ रहे हैं अटैचमेंट के भाव, ख्याल में आती है बात? तो ये जो भाव उठ रहे हैं वो मेरे से भिन्न है, मैं उसका ज्ञाता हूँ, तो उसी को जानते रहने से वो तो रुकने वाले नहीं है। तो जानना किसके, अपने को जानते रहो तो वो उठने वाले को हमने अबुद्धिपूर्वक में चला जाएगा, उसका स्वामित्व तो छूट जाएगा। हम तो राग को ही चेंज करने की कोशिश, सब जगह कहीं पर भी उसी का उपदेश होता है, ऐसा मत करो ऐसा करो, और वो भी क्रिया की बात आती है, राग की बात तो और जुदी है, क्या करें। यानी है तो सरल, मगर वो उसकी जो पकड़ना चाहिए ना एग्जैक्ट उसका, वो छूट जाता है। क्योंकि क्या है वो पॉइंट, हाँ पॉइंट बराबर पकड़ो ना उसको तो कुछ कठिन नहीं। नहीं देखो, हमने जिसको कहेंगे परलक्षी ज्ञान में नक्की कर दिया, शास्त्र ज्ञान में नक्की हो गया, और फिर नक्की कर दिया कि यही मार्ग है। अब उपाय क्या है, उसका भी लक्ष्य छोड़ के और अपना लक्ष्य करने की बात है, ये अपने में स्थिर होने की बात है। अभी कुछ नॉलेज नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से मालूम है, ऐसा लगता भी मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, मालूम है, परंतु अभी कहाँ रुके, अभी हम ये स्थिरता जो करनी है होनी है वो नहीं हो रही, बस इतनी बात है। तब तक क्या करेंगे, करेंगे हम उसको अभ्यास करेंगे, बारंबार उस पर सोचेंगे, और उसके लिए उपाय क्या है वही है।
नहीं, लोगों के यही मान्यता है, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं,
हाँ वही।
अरे ज्ञान जुदा है, श्रद्धा जुदी है, क्योंकि पहले स्टेज में ही वो खुश हो जाते भाई, ज्ञान लेना है कि श्रद्धा सही करने के लिए, और ज्ञान में ही हम संतुष्ट हो गए, खत्म।
यानी जान लिया ना, वो पर्याय की बात कर रहे हैं, परंतु वो ज्ञान स्वभाव जहाँ से पर्याय निकल रही है, क्या जाना उसकी महत्व नहीं है, वो जानने का सामर्थ्य अंदर से है, और वो तो उस सामर्थ्य ने केवल ज्ञान की बात है, सर्वज्ञ स्वभाव की बात है, उसको अगर नक्की करते हैं तो ये पर्याय वाले ज्ञान की महत्ता नहीं रहती फिर, वो तो जानने जानने वाला है ना, पर्याय तो निकलेगी कुछ ना कुछ, जानने का कार्य तो हर समय चल रहा है, तो मैंने ये जाना, ये रहती है, तो पर्याय की बात है, वो जानने वाला जो है उसको जानने की बात है। चलो अभी रुकेंगे यहाँ पे, हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 34 पेज का, 660 कल।
शावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।
जय भीम।